ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही पराग पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस दय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वह भगवान ऋषभ ध्वज ही सबके श्रेष्ठ परमेश्वर है। उन दिनों पार्वती देवी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय हो उठे। भक्तिहीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से ही नहीं तदांतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। वे हंसते हुए बोले, सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुरक्षित और गौरी शंकर शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वह एक उत्तर निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। वहां उन्हें स्वार्थ छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दंपति मती जगमाता पार्वती विराजमान थी। सब ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी ये बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। तो द्विज के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर गिरिराज देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है अपना वह विचार आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत ऋणता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए मुझे विवश करना पड़ा है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन के लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांव के ही हट पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्र का भी किया। वह भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर, चंद्रकेतु और इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मालिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही हो बुलावे में आ गई और मूर बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासी निविकार तथा काम के शत्रु हैं। इसमें संशय नहीं है। वे अमंगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कई घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को नहीं पता। कुसक्त वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं। नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। देवेश्वरी गिरानंदिनी तुम्हारे विचार को की ऐसे फर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच कर विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा नहीं सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्हें त्याग दिया और स्वतंत्र हो गए। अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप ध्यान करते हुए उसी से सुखपूर्वक रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो। इस दुर्बुद्धि को त्याग दो महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते में कुशल हैं। उनके साथ ही तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुख देने वाला होगा। पार्वती तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है इसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका का पार्वती हंस पड़ी और पुनः ज्ञान विषाद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा मुनीश्वरो आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु दीजो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझे स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ये विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें इहलोक और परलोक में दुख प्राप्त होता है, सुख कभी भी नहीं मिलता। अतः दीजो गुरुओं के लिए वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार जिससे शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के इस उत्तम निश्चय को जानकर सप्तऋषि भी उनकी जय जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुनि गिरिराज देवी की परीक्षा करने वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान पर चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक चुनवा उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर सर्वलोक चले गए।